मोबाइल वाणी साझा मंच के माध्यम से हरियाणा राज्य से गणेश जी दोबारा से सवाल करते हैं और उन्होंने इस बार सवाल किया है कि ये जो लॉकडाउन की घोषणा हुई है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बुरा प्रभाव मजदूरों पर पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में मजदूरों को क्या करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है गणेश जी आपका। ऐसी स्थिति में इस लॉकडाउन ने हमें आईना दिखा दिया है, खासकर मजदूर वर्ग को ये आईना दिखा दिया है। मजदूर वर्ग अभी तक इस भ्रम में था कि वो इस व्यवस्था में मध्यम वर्ग के जितना ही अधिकार रखता है, मध्यम वर्ग या शासक वर्ग के जितना ही अधिकार रखता है, कानून में उसकी स्थिति बराबर है। आप ये गौर कीजिए कि यहाँ पर जो ये कोरोना वायरस COVID-19 नाम का जो वायरस भारत में आया है ये चीन से आया है और इसको चीन से भारत में लाने का श्रेय मजदूरों को नहीं जाता है। ये धनाढ्य लोग, कॉरपोरेट लोग विदेशों में घूमने गए थे, वहाँ अपने किसी बड़े बिजनेस मीटिंग में गए थे या रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, ये बड़े लोगों के का ही ये काम है ये सब, कि वो हवाई जहाज में बैठकर कोरोना वायरस से संक्रमित होकर भारत में आए और भारत में जब इसका संकट मंडराने लगा तब लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। लॉकडाउन करना इसके विरोध में हमें नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन करना जरूरी था, नहीं तो इससे पूरे देश की जनता को कुप्रभाव झेलने पड़ते। यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ समस्या है कि सरकार को लॉकडाउन करने से पहले तैयारी करनी चाहिए थी, मजदूरों को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए था, मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में ध्यान रखकर सोचना चाहिए था। प्रवासी मजदूर हैं, अकेले रह रहे मजदूर हैं और विद्यार्थी हैं जो कि घरों से दूर अकेले रह रहे हैं, ये बहुत सारे ये ऐसे लोग जो अभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने अगर किसी की समस्या का ध्यान रखा है तो वो है खाता पीता मध्यम वर्ग और शासक वर्ग के ऊपरी तबके के लोग। मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, भूमिहीनों के बारे में, जिनके पास घर नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। दरअसल ये व्यवस्था मजदूरों के हित के बारे में सोचने के लिए है ही नहीं। तो मजदूरों के सामने ये एक आईना है, इसको एक आईने की तरह देखना चाहिए। मजदूरों को यह सीखना चाहिए कि मजदूरों के भले की बात सिर्फ मजदूरों की सरकार ही सोच सकती है और मजदूरों की सरकार कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं बना सकता है। मजदूरों की सरकार खुद मजदूर को ही बनानी होगी और इसकी शुरुआत होती है जागरूकता से, अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने की अवस्था से। और मजदूर के जागृत होने का प्रमाण ये है कि वो जहाँ पर काम कर रहा है, जहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर वो संगठित हो। अगर मजदूर संगठित नहीं है तो इसका मतलब वो जागरूक नहीं है, वो जागना नहीं चाहता है, वो अपना भला नहीं चाहता है, वो ऐसे लोगों से अपने भले की उम्मीद करता है जो सच में उनका भला तो चाहते नहीं है बल्कि उनका विरोध करते हैं, उनका बुरा चाहते हैं। बुरा चाहने के पीछे उनका कारण ये है कि अगर मजदूर जितना शोषित होगा उतना ही मध्यम वर्ग और धनाढ्य वर्ग खुश होगा, समृद्ध होगा। तो यहाँ पर मजदूरों को ये बात समझनी चाहिए, इस संकट की घड़ी को एक सीख के तौर पर लेना चाहिए। जब भी ये लॉकडाउन खत्म हो मजदूरों को संगठित होना होगा और ये बात भी समझ लेनी होगी कि यहाँ पर ये सरकार मजदूरों के लिए कुछ नहीं करने वाली है। हाँ, कुछ ऐसा कर सकती है, थोड़ा बहुत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि हाँ सांस लेते रहें, जिंदा रहें, और नहीं भी रहेंगे तो क्या। और दूसरा, ये संकट की घड़ी ये भी दिखा रहा है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं मजदूरों के लिए। सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है वो भी कुछ नहीं कर सकती है। पैसा, कोई दानवीर का पैसा सिर्फ आपके ऊपर एहसान लाद सकता है, कुछ 100-200-500 रुपए की मदद करके, और कुछ नहीं कर सकते। इससे ये स्पष्ट होता है कि मजदूर की मुक्ति, मजदूर का सुख, मजदूर के हित की बात सिर्फ मजदूर ही सोच सकता है और मजदूर की सरकार ही सोच सकती है, मजदूर का संगठन ही सोच सकता है। अभी भी अगर मजदूर जागे नहीं और संगठित होना शुरू नहीं किया तो ऐसी महामारियां, ऐसे संकट, ऐसे युद्ध की घड़ियां आती रहेंगी। ये युद्ध की घड़ी भी हो सकती थी, विदेशी आक्रमण का भी सिचुएशन हो सकती थी, तब भी मजदूरों की यही स्थिति होनी थी। लेकिन अगर मजदूर जागृत नहीं है, वो संगठित नहीं होना चाहता है, तो ये स्थिति झेलने के लिए हमेशा तैयार। उम्मीद करता हूँ कि ये बात जो मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ आप तक पहुँची होगी। धन्यवाद।